भागवतम दशम स्कंद अध्याय 77 कृष्ण द्वारा शाल्व का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वहीं वापस ले चलो जहां वीर द्युमान खड़ा है। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उसकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हुए 8 नाराज बाणों से उसे भेद दिया। इन बाणों में से 4 से उसने द्युमान के 4 गोणों को, 1 बाण से उसके सारथी को तथा 2 अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को और अंतिम बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार किया। गद, सात्यकी, ताम तथा अन्य वीर शाल्व की सेना का संहार करने लगे और इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। इस तरह यदुगण तथा शाल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और यह घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था तो भगवान को अब शकुन दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ प्रीता तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। भगवान ने अपने आप मन ही मन कहा, क्योंकि मैं यहाँ अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूँ, शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं और शाल्व तथा उसके 100 विमान को भी देखा तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजना की और फिर दारुक से निम्न वत बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरा रथ शाल्व के निकट ले चलो। यह सौभपति शक्तिशाली जादूगर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की रात संभाली और उसे आगे हांका। क्यों ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हर एक की गरुड़ के प्रतीक की ओर दृष्टि पड़ी। जब नष्ट प्राय सेना के स्वामी शाल्व ने कृष्ण को पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। शाल्व द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेज वान उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान शौरी ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तब भगवान कृष्ण ने शाल्व को 16 बाणों से भेद दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए सौभ विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को अप्लावित करता है। तब शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाई बाह पर प्रहार किया जिसमें वे अपना चारटंग धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। जो यह घटना देख रहे थे वे सब हाहाकार करने लगे। तब सौभ के स्वामी ने जोर जोर से गरज कर जनार्दन से इस प्रकार कहा। शाल्व ने कहा, रे मूर्ख, क्योंकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेतर का अपहरण किया है और उसके बाद जब वह तर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है, इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहां से लौटना नहीं होता। यद्यपि तुम अपने को अपराजेय मानते हो किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े होने का साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को देख नहीं पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे शाल्व के कंधे की हड्डी पर दे मारा, जिससे वह छटपटा उठा और रक्त वमन करने लगा। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शाल्व दृष्टि से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया। उनके समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा, मुझे देवकी ने भेजा है, और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे। उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे अपने माता पिता के प्रिय, शाल्व तुम्हारे पिता को बांध कर उसी तरह ले गया है जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। जब उन्होंने यह शुभकारी समाचार सुना तो सामान्य मनुष्य की भूमिका निर्वाह कर रहे भगवान कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति प्रेम वश उन्होंने सामान्य भद्र जीव जैसे शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता, तो यह शूद्र शाल्व किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है। निसंदेह भाग्य सर्वशक्तिमान होता है। जब गोविंद यह शब्द कह चुके तो भगवान के समक्ष वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी पुरुष को लेकर सौभपति पुनः प्रकट हुआ। तब शाल्व ने इस प्रकार कहा, शाल्व ने कहा, यह रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। रे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सको तो बचाओ। इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर शाल्व अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस तीर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे सौभ यान में घुस गया। भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण है और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है, तो भी प्रिय जनों के प्रति महान स्नेह वश एक क्षण के लिए वे सामान्य प्राणी की मुद्रा में लीन हो गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण हो आया कि यह तो मैं दानव द्वारा सृजित आसुरी माया है जिसे शाल्व काम में ला रहा है। अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर सौभ यान में उड़ता देखकर भगवान ने उसे मार डालने की ठानी। हे राजऋषि, यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया हुआ है, किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को भुलाकर अपनी ही बात काटते हैं। भला शोक, मोह, स्नेह या भय, जो कि अज्ञान जनित है, किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति, ज्ञान तथा शक्ति सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत हैं। भगवान के भक्तगण भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रभलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्मक बुद्धि को दूर कर देते हैं, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती रही है। इस तरह वे उनकी निजी संगति में नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। तब भला वे परम सत्य, जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य है, मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं। जब शाल्व बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की जड़ी लगाए हुए था, तो अमोघ पराक्रम वाले भगवान कृष्ण ने शाल्व पर अपने बाण छोड़े, जिससे वह घायल हो गया और उसका कवच, धनुष तथा मुकुट का मणि ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के सौभ यान को छिन्न भिन्न कर डाला। भगवान कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ सौभ विमान समुद्र में गिर गया। शाल्व ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत की ओर लपका। जब शाल्व उनकी ओर झपटा तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी उस बाह को काट लिया जिसमें गदा पकड़ी थी। अंत में शाल्व का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाले सूर्य जैसा लग रहा था। तेज से चमकते हुए भगवान उद्यांचल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो उदय होते सूर्य को धारण करता है। भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस महान जादूगर के सिर को कुंडलों तथा किरीट सहित विलग कर दिया, जिस तरह पुरंदर ने वृत्रासुर के सिर काटने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया था। यह देखकर शाल्व के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चित्कार उठे। अब पापी शाल्व के मृत हो जाने तथा उसके सौभ यान के विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। तब अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंत वक्र ने बहुत कुपित होकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा शाल्व का वध नामक 77वें अध्याय के श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।